हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आकांक्षा ने वहीं पास जाकर डिजाइनर के शानदार कलेक्शन में से कुछ कपड़े चुने, उन्हें वहीं चेंज किया और तैयार होकर सिद्धार्थ के आने का इंतजार करने लगी। तभी उसकी माँ ने फोन करके उसे सब कुछ उसे बता दिया और ये भी साफ साफ कह दिया गया कि इसी हफ्ते उन दोनों की शादी होने वाली है। ये सुनते ही वो खुशी से सीधे सिद्धार्थ से जाकर लिपट गई। सिद्धार्थ ने भी उसको बैक हक किया, उसके बाद वो उसके साथ होटल जाने के लिए भी तैयार हो गया। वहीं सिद्धार्थ ने आकांक्षा के चेहरे की चमक देख ली और पूछे बिना नहीं रह पाया और बोला, क्या बात है, तुम आज बड़ी खुशी में नजर आ रही हो। आ तभी आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, जानते हो, इसी हफ्ते तुम्हारी और मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। इसी हफ्ते हम लोग शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ये सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक अलग ही तरह का भाव आ गया। भले ही वो झलक को भुलाने के लिए और झलक को अपने दिल से निकालने के लिए आकांक्षा से शादी कर रहा था, यानी एक तरह से डुप्लीकेट से काम चला रहा था, लेकिन शादी की बात सुनकर उसके मन में कुछ अजीब सा एहसास हुआ और वो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। वही आकांक्षा जल्दी से उसके पास आकर बोली, क्या बात है, तुम कुछ ज्यादा ही चुप हो गए हो, शायद खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो। लेकिन देखना, हम दोनों साथ में कितना मजा करेंगे, कितना अच्छा वक्त गुजरेगा, हम मिलकर बिजनेस को भी आगे बढ़ाएंगे। सच में सिद्धार्थ, मेरा एक सपना पूरा होने वाला है। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम जानते हो ना, तुम्हारे प्यार में मैंने कुछ गलत काम भी किए हैं और उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांग चुकी हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे पूरी तरह से माफ़ कर दोगे। इस तरह एक बार फिर से विक्टिम कार्ड खेलते हुए आकांक्षा ने सिद्धार्थ को उदास देखा। सिद्धार्थ ने तुरंत उसकी आंखों में आए आंसुओं को देखा, उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। हम दोनों साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सिद्धार्थ ने ये बातें बड़े ही प्यार से कही थी। अब तो आकांक्षा खुशी से उछल पड़ी। उसने सिद्धार्थ को कसकर गले लगाया, उसकी गालों पर किस किया और फिर जल्दी ही दोनों होटल की ओर रवाना हो गए, क्योंकि आकांक्षा ने पहले से ही वहां एक वीआईपी टेबल बुक कर रखी थी। वहां पहुंचते ही सिद्धार्थ ने कुर्सी खींचकर आकांक्षा को बैठाया। बड़े ही खूबसूरत माहौल में दोनों साथ साथ डिनर करने लगे। टेबल पर चिकन पीस रखे हुए थे, जिन्हें आकांक्षा बड़े ही सलीके से कांटे चम्मच की मदद से खा रही थी। उसे इस तरह खाते हुए देखकर ना चाहकर भी सिद्धार्थ को एक बार फिर झलक याद आ गई। अगर झलक वहां होती तो कांटे चम्मच की जगह हाथों से ही खाना शुरू कर देती और अब तक तो पूरी प्लेट साफ भी कर चुकी होती। ऊपर से वो बड़े बड़े बोलते हुए न जाने क्या क्या बातें करती रहती, जबकि आकांक्षा बड़ी ही शांति और तहजीब से खाना खा रही थी। कहीं न कहीं सिद्धार्थ ने खुद को डांट लिया। उसने मन ही मन खुद से कहा कि अब उसे झलक के बारे में नहीं सोचना है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। वैसे भी जिस लड़की की कोई औकात नहीं थी, जिसका कोई वजूद नहीं था, उसे सिद्धार्थ खुराना अब याद नहीं करेगा। उसने अपने अंदर के घमंड को फिर से जगा लिया और झलक के ख्यालों को पूरी तरह से दिमाग से निकालने की कोशिश करने लगा। डिनर खत्म होने के बाद आकांक्षा ने सिद्धार्थ से कहा, अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम यहीं पास के होटल में आज रात पूरा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वैसे भी मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती हूँ। ये सुनकर सिद्धार्थ उसकी मंशा समझ गया। वो चाहती थी कि आज की रात वो उसके साथ रहे, लेकिन भले ही उसने खुद को आकांक्षा से शादी करने के लिए तैयार कर लिया था, फिजिकली उसके करीब जाना वो अब भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने तुरंत मना करते हुए कहा, तुम समझो, शादी में अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया है। अगर इस बीच किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो बेवजह ड्रामा क्रिएट हो सकता है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, शादी के बाद हम हनीमून के लिए चलेंगे और तब मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। सिद्धार्थ की ये बातें सुनकर आकांक्षा खुशी से झूम उठी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी खुशियां एक ही पल में सच हो गई हों। इसके बाद दोनों खुशी खुशी वहां से निकल पड़े और अपने अपने घर की ओर रवाना हो गए। वहीं रणविजय दूसरी टेबल पर बैठा हुआ उन दोनों की बातें सुन रहा था और आकांक्षा व सिद्धार्थ को एक साथ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट थी। वो मन ही मन में सोचते हुए बोला था, मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से तुम्हें झलक से प्यार हुआ था, उसे कहीं ज्यादा तुम्हें आकांक्षा से प्यार हो जाए, क्योंकि अगर तुम्हें एक बार आकांक्षा से प्यार हो गया और उसके बाद मैं उसके करीब गया तो तुम्हारी हालत देखने लायक होगी, मिस्टर सिद्धार्थ खुराना। रणविजय के ये विचार बेहद गंदे और घटिया थे, लेकिन उस वक्त वो पूरी तरह शांत था। वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि जो वो करना चाहता है उसके लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए। वो फटाफट यहाँ का काम खत्म करके सीधा अपने बिजनेस और काम धंधे पर वापस लौटना चाहता था। असल में उसे अनामिका के बारे में कहीं से भी कोई खबर नहीं मिल रही थी, इसलिए वो बेसब्री से चारों तरफ अनामिका को ढूंढ रहा था ताकि एक बार उससे मिल सके और उससे माफ़ी मांग सके। अनामिका के जाने के बाद उसे एहसास हुआ था कि शुरू से ही अनामिका ने उसकी कितनी ज़्यादा मदद की थी, लेकिन सिद्धार्थ के लिए उसके अंदर पैदा हुई नफ़रत और बदलाव की वजह से उसने अनामिका का दिल दुखा दिया था। इसी कारण वो उससे दिल से माफ़ी मांगना चाहता था। फिलहाल उससे माफ़ी मांगने से पहले वो वापस अपने होम टाउन लौटना चाहता था, लेकिन उससे पहले वो ये देखना चाहता था कि सिद्धार्थ और आकांक्षा की शादी के बाद सिद्धार्थ कब और कैसे सच में आकांक्षा को चाहने लगेगा। जैसे ही उसे ये एहसास हो जाएगा कि सिद्धार्थ सच में आकांक्षा के करीब आ चुका है और उसके साथ रिश्ता बना चुका है, तभी जाकर उसका असली मकसद पूरा होगा। इसी सोच के साथ वो वापस लौटने की तैयारी में था और दोनों की शादी के इंतजार में था। वो खुद चाहता था कि आकांक्षा और सिद्धार्थ ज्यादा से ज्यादा समय एक साथ बिताएं ताकि वे एक दूसरे के करीब आ सकें, क्योंकि जब तक वे एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे तब तक उसका मकसद पूरी तरह पूरा नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर बाद आकांक्षा और सिद्धार्थ को जाते हुए देखकर रणविजय ने अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा लिया। उनके जाने के बाद वो सीधा अपनी बुलेट बाइक पर बैठा और वहां से निकल गया ताकि कोई भी उसे पहचान न सके। वहीं दूसरी ओर झलक वापस सीधा घर आ गई थी। घर पहुंचते ही उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। अनामिका ये देखकर घबरा गई और तुरंत उसके पीछे पीछे दौड़ी थी। उधर दिग्विजय सिंह जी भी जाकर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए थे। वे जानते थे कि अगर इस बार उन्होंने झलक को अकेला छोड़ दिया तो वो उन्हें भी गुस्सा दिखाई से पीछे नहीं हटेंगी। यही सोचकर उन्होंने जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। जैसे ही सभी लोग टेंशन में घर पहुंचे, झलक फटाफट अंदर गई। अंदर का नज़ारा देखकर वो पूरी तरह से चौंक गई, क्योंकि स्नेहा जी और सौरभ जी ने मिलकर बहुत ही शानदार इंतजाम किया हुआ था। रोहन और बाकी सबने बड़े बड़े गुब्बारे लगाए हुए थे और फूलों से वेलकम बैक लिखकर झलक का स्वागत किया गया था। ये देखकर अनामिका भी खुशी से उछल पड़ी। वो बोली, अरे वाह, इतना अच्छा वेलकम, मज़ा ही आ गया। देखो ना कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ, गुब्बारों से भरा हुआ पूरा घर। तभी रोहन जल्दी से आगे आया और बोला, दीदी इसमें सिर्फ मम्मी पापा का हाथ नहीं है, मेरी भी बहुत मेहनत लगी है। मैंने बहुत मेहनत से ये सब तैयार करवाया है और वो भी सिर्फ अपनी झलक दीदी के लिए।
ये कहते हुए रोहन ने झलक को अपने हाथों से बनाया हुआ एक गिफ्ट दिया। उस गिफ्ट में एक ड्राइंग थी। ड्राइंग में सुपरमैन जैसी एक इमेज बनाई गई थी जिसके नीचे लिखा था, सुपर वुमेन झलक दीदी। ड्राइंग देखकर झलक मुस्कुरा उठी और अनामिका हंसते हुए बोली, अरे वाह कितनी प्यारी ड्राइंग है, ये किसने बनाई है? लेकिन तुम्हें क्या सिर्फ तुम्हारी झलक दीदी ही सुपर वुमन दिखती है? क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं देती? मुझ में भी बहुत ताकत है, फिर मजाकिया अंदाज में बोली। अगर मैं एक साथ 10-15 लोगों से नहीं लड़ सकती तो 2-4 से तो लड़ ही सकती हूँ, इतनी ताकत तो है मुझ में। फिर तुमने मेरी ड्रॉइंग क्यों नहीं बनाई? ये सुनकर रोहन हंसते हुए बोला, अरे दीदी जब आप यूके वाली ब्रांच की CEO बन जाओगी ना तब मैं आपके लिए भी बिल्कुल ऐसी ही ड्रॉइंग बनाऊंगा। क्योंकि उसने दादाजी की बातें सुन लो थी और वही रटकर उसने अनामिका को बोल दी। फिलहाल रोहन की ये बात सुनकर अनामिका खिलखिलाकर हंस पड़ी और वहां मौजूद बाकी सभी लोग भी मुस्कुरा उठे। फिलहाल घर पर ही अपने हाथों से एक केक बनाया गया था जिसमें सौरभ जी ने पूरी तरह से मदद की थी। बहुत प्यार से उन दोनों ने मिलकर वो केक तैयार किया था। झलक ने आगे बढ़कर केक की कटिंग की और फिर सभी लोगों ने मिलकर बहुत अच्छे और खुशनुमा माहौल में एक साथ सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया। झलक अच्छी तरह जानती थी कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशी के लिए किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके मन के दर्द को दूर करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए झलक ने भी आगे बढ़कर सबका साथ दिया, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सभी के साथ वक्त बिताया और सबका स्वागत किया। झलक ने एक नज़र हल्की मुस्कान के साथ सभी लोगों पर डाली। उसके बाद वो स्नेहा जी के पास गई और बहुत ही शांत आवाज में बोली, थैंक यू सो मच माँ, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। ये कहकर वो बिना रुके सीधे अपने कमरे की ओर चली गई। झलक को जाता हुआ देखकर कहीं ना कहीं अनामिका, दादाजी और वहां मौजूद बाकी सभी लोगों के दिल में अजीब सा खालीपन आ गया। सभी की आंखों में एक अजीब सी उदासी झलकने लगी। तभी अनामिका बेख्याली में बोली, झलक को शायद इस खबर के बारे में पता चल चुका है कि इसी वीक सिद्धार्थ खुराना और आकांक्षा ओबेरॉय की शादी होने वाली है। उसने न्यूज़ देख ली होगी, लेकिन आपने देखा किस तरह वो अपने दर्द और दुख को छुपाकर हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। ये सुनकर दादाजी एकदम दबंग और भरोसे भरे अंदाज में बोले, हमें ज्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बच्ची सब कुछ ठीक कर देगी, और वैसे भी मेरी झलक बहुत बहादुर है। लेकिन तभी अनामिका ने थोड़ी घबराई हुई आवाज़ में कहा, दादाजी झलक ने वापस मुंबई जाने का फ़ैसला कर लिया है।